भाई बहनों और भाई, सब प्रकार से प्रभु के होकर रहना यह एक बहुत बढ़िया बात है मनुष्य की ओर से। और जिस समय कोई साधक इस बात को अपनी ओर से मान लेता है ठान लेता है कि अब हम हर प्रकार से उनके होकर रहेंगे, तो उसके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आता है। ऐसा कौन कर सकता है कि अब हम हर प्रकार से नीचे होकर रहेंगे? ऐसा कौन कर सकता है? सोच करके देखिए तो उनके अनुरागी भक्त जो हुए, परमात्मा के प्रेमी जन, उनमें से स्वामी जी महाराज के पास बैठकर हम लोगों ने उनकी बातें सुनी। महाराज जी ने क्या कहा कि भाई, संत के कहने से, भक्त के कहने से ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए तुम मान ही लो कि परमात्मा से ही मेरा नित्य संबंध है, वही मेरा अपना है, अथवा मैं केवल उन्हीं का हूँ। अपनी ओर से मान लो, ये मत पूछना कि भगवान कहाँ है और कैसे हैं, कब मिलेंगे, क्या करते हैं, और हम उनके समर्पित हो जाएंगे तो इसके बदले में मेरे साथ क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ मत पूछो, कभी मत पूछो। क्यों? इसीलिए कि हम लोगों ने सुना है कि परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है। दुर्बल आदमी को कोई सामर्थ्यवान सहारा मिले तो कौन इनकार करेगा? सर्व सामर्थ्यवान है, सृष्टि के मालिक हैं, अनंत सौंदर्यवान है। तो ऐसा अगर किसी को संबंधी मिलता हो, मित्र मिलता हो, रक्षक मिलता हो, तो कौन इनकार करेगा? सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं दुर्बल हूँ और वे अनंत सामर्थ्यवान हैं, तो उनका बल मेरे काम आ जाएगा। मैंने अनेक प्रकार के अपराध किए हैं और वे पतित पावन हैं, तो उनकी पतित पावनता मेरे काम आ जाएगी। मेरे भीतर बहुत प्रकार की दरिद्रता है और वे सृष्टि के मालिक हैं, तो उनकी संपत्ति मेरे काम आ जाएगी। ऐसा ध्यान नहीं आएगा, इसलिए महाराज जी मना करते हैं, पूछो ही मत कि कहाँ है, और ये भी मत सोचो कि कैसे है, ये भी मत पूछो कि क्या करते हैं, और ये भी ध्यान में मत रखो कि मैं उनका हो जाऊंगा तो वे हमसे क्या क्या देंगे। इसलिए कि अगर ऐसी बातें सोचोगे और पूछोगे तो जिस चाह को लेकर के, जिस अपने संकल्प को लेकर के तुम संसार में फंसे हुए हो, उन्हीं संकल्पों को लेकर परमात्मा के बारे में सोचोगे तो तुम संकल्प पूर्ति की दुर्दशा से ऊपर नहीं उठ सकोगे। और भी एक जगह लिखा है कि अपना संकल्प लेकर जाओ, अपनी कामनाएं लेकर जाओ तो भगवान भी संसार है, और कामनाओं से रहित होकर जाओ तो संसार भी भगवान है। स्वामी महाराज जी बाणी है, एक दूसरी जगह लिखा है कि जो कुछ चाहता है भगवान उसके पीछे रहते हैं, पीछे खड़े रहते हैं, और जो कुछ नहीं चाहता है उसके सामने आ जाते हैं। एक बार मैंने प्रश्न सुनाया था ना आपको, इलाहाबाद में एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी आप भगवान को दिखा सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ हाँ मैं दिखा सकता हूँ, बताइए भगवान कहाँ है? कभी तेरे पीछे है। तुमने पीछे मुड़ के देखा तो उसको तो दिखा नहीं, उसने कहा कहाँ दिखते हैं पीछे, उसको पीछे कहाँ देख रहा है, तुम्हें करके देख रहा है पीछे के सामने ही तो हुआ, पीछे करके तो उसे दिखे भगवान। तो इन बातों में बड़ी रहस्य है। क्या रहस्य है? कि जो कुछ भी चाहता है संसार से न चाहता है परमात्मा से ही सही, तो चाहने वाले को परमात्मा मिलेंगे तो संसार के रूप में ही मिलेंगे, क्योंकि कामना तो संसार की ही होती है ना। तो लोभी अगर धन की कामना लेकर के भगवान से मिलने जाएगा तो भगवान धन होकर के ही तो उसको मिलेंगे, तभी तो उसे संतोष होगा, ये तो फिर क्या। इसी तरह से जो कुछ भी चाहता है उससे परमात्मा मिलते हैं तो संसार होकर मिलते हैं, फिर छूटते हैं, फिर बंधन होता है, फिर पराधीनता होती है, फिर विरोध होता है, फिर यही सब होता है। तो एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि हम सब प्रकार से उनके होकर रहे, एक प्रकार से नहीं सब प्रकार से। तो सब प्रकार से उनके होकर रहने का ये अर्थ है कि उनके अतिरिक्त मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी भारी कसौती है, जिसको कुछ भी चाहिए उसके लिए अपने ही में विद्यमान परमात्मा का अनुभव दुर्लभ है, नहीं हो सकेगा। तो अपने पर अपना अधिकार नहीं है, मुझ पर मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को उनके समर्पित कर दिया। तो कोई वस्तु अपने किसी प्रियजन को दे देने के बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार माना जाता है? जी नहीं। तो जिसने अपने को ही परमात्मा को दे दिया, अपने पर वो अधिकार कैसे मानेगा? और अपने पर अधिकार न मानने का अर्थ क्या होगा प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन में? क्या होगा कि अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई सुख नहीं, अपने पर अपना अधिकार नहीं, तो हम सब प्रकार से प्रभु के होकर रहते हैं। तो जिनके होकर रहते हैं बस उनकी कृपा का ही आश्रय है, और उनके मंगलमय विधान से ही जो होगा तो होगा। जो जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे, जो खिलाएंगे जो खाएंगे, जो कराएंगे जो करेंगे। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकता है सचमुच जिसमें अपनी कोई कामना बांधना शेष नहीं है। बड़ा प्यारा करता है वो आदमी भगवान को, ऐसा मैंने सुना है, बहुत प्यारा लगता है। क्या होता है कि जिसने परमात्मा की प्रियता के लिए उनके आश्रित होकर रहने में देखे हुए संसार के सब चकमक को छोड़ दिया, उस पर परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उस आनंद स्वरूप में आनंद की लहरियां उठती हैं। तो उस साधक के जीवन को ऐसे भरपूर बनाती है कि वो सदा सदा के सब प्रकार की अतृप्ति और अभाव को मिटा करके एकदम आनंद स्वरूप ही हो जाता है। ऐसा होता है तो प्रातःकाल अपनी तरफ से पुरुषार्थ की बात हो गई थी। अब इस समय अपने लोगों को थोड़ा सहारा लेने के लिए मैं परमात्मा की ओर से जो बातें होती हैं मनुष्य के साथ उसकी पूरी चर्चा कर रही हूँ। उसका श्रीगणेश ये है कि जिस मनुष्य ने देखे हुए सुहावने लुभावने संसार की ओर से अपने को हटाया, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्या करिए, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उस प्यारे प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना है। तो वो कहते हैं कि हे प्यारे, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो सो करो मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं कि हे भक्त, तेरी प्रसन्नता जिसमें होगी सो सब करूंगा मैं तेरे साथ। तो स्वामी जी महाराज दिया प्रीतम के लीला विहार की चर्चा करते हुए कभी कभी सुनाया करते थे, जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोई भावे, जोई जोई मोई भावे सोई सोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोई भावे। ये कौन है? ये प्रेमी जोड़ी जोड़ी प्यारे करे थोड़ी थोड़ी मोल भावे। प्यारे जो करते हैं उसी में मुझको आनंद आता है, कोई मुझको अच्छा लगता है। हाँ इतना नहीं, जोड़ी जोड़ी मोल भावे थोड़ी थोड़ी प्यारे जिस जो जो मुझे प्रिय लगता है वही वही प्यारे करते हैं। सब प्रकार से उनके होकर रहने का पुरुषार्थ किया भक्त ने। तो उसने क्या कहा? जोई जोई प्यारे करे सोई सोई मोल भावे। यानी जो करते हैं उसमें मुझे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि भक्त का अपना कोई संकल्प नहीं है, भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भक्त का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसने सर्व उत्पत्ति के आधार जीवन का जो उद्गम है जिसमें से प्रत्येक क्षण में असंख्य असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा जो जीवन का मूल स्रोत है उस पर भक्त ने अपने सीमित अहम को न्यौछावर कर दिया। मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, सब प्रकार से मैं तुम्हारा हूँ। तो वो कहता है जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोल भावे। बड़ा आनंद आ गया, अब अपने में अपना करके कोई संकल्प ही नहीं है। तो प्यारे जो करते हैं उसी में आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब भक्त की ओर से वो तो कम है छोड़े, अब भगवान की ओर से क्या बात हो रही है? जोई जोई मोई भावे सोई सोई प्यारे करे। भक्त को जो अच्छा लगता है वही भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में उनको प्रसन्नता है। वे तो आप काम है, वे तो सत्य संकल्प है, वे तो सब प्रकार से पूर्ण है, उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? कामनाएं लेकर हम संसार में रहते हैं, तो उन्होंने सृष्टि के संचालन का एक मंगलकारी विधान बना दिया। मेरी किसी किसी कामना को पूरी करने किसी किसी कामना को पूरी नहीं की, और पूर्ति अपूर्ति के सुख दुख का चित्र दिखाया। संसार का बड़ा काम है भाई, लेकिन जिसने प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर के और दूसरी किसी भी तरह से अपना परित्राण न देख करके उन महामहिम की महिमा को स्वीकार करके अपने को सब प्रकार से उन पर आश्रित कर दिया, ऐसा जो भक्त होता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। तो आपने भगवान को प्यार किया और अपने सब संकल्प छोड़ दिए, बड़ी बहादुरी है आपकी। तो परमात्मा आपसे उत्तम थोड़े हैं, आपने उनकी प्रसन्नता के लिए अपना संकल्प छोड़ा तो वे आपकी प्रसन्नता के लिए सब लीलाएं करना शुरू कर देते हैं। और इस अपनेपन का भाव जो है परमात्मा को अत्यंत प्रिय है, अपनेपन का भाव। कहाँ से आएगा? ये मनुष्य की ओर से आएगा। तो मनुष्य ने संसार में रहकर संसार को देखा, संसार की सुंदरता को देखा, संसार के वैभव को देखा, संसार की विपन्नता को देखा, अनेकों रूप हमने संसार के अपनी आंखों देख लिया। और उसके बाद उस स्वयं प्रकाश के दिए हुए प्रकाश में विवेक के द्वारा हमने जाना सचमुच कभी सुंदर कभी असुंदर, कभी वैभव कभी विपन्नता कभी आपत्ति की शक्ति, जितने रूप बन रहे हैं सब बनने बिगड़ने वाले हैं। और इन बनने बिगड़ने वालों के भीतर जो सत्ता रूप से विद्यमान है वही सदा सदा का है, सदा सदा तक रहने वाला है। इस प्रकार के विचारों से संतों की वाणी से सुनकर ग्रंथों के वाक्यों के आधार पर कुछ कुछ महा मानव ऐसे हुए जिन्होंने सब कुछ उनके अर्पित करके अपने को उनकी कृपा के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हें जैसे अच्छा लगे जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो सो करो। तो ये है सब प्रकार से अपने को उन पर अर्पित कर देना। और मनुष्य के हृदय का यह अपनापन अब पवित्र हो गया, यह अपनापन, क्योंकि इस अपनेपन के पीछे कोई कामना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि भगवान को अपना मान लो तो उसके बदले में ये सब हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं है, केवल प्रेम का नाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही अपने को छोड़ दिया गया। तो प्रभु को इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक दिन मैं सुन रही थी, हम महाराज कह रहे थे कि उनको कृपा सिंधु कहो, उनको पति स्वामी कहो, उनको जगतपति कहो, उनको ये सब कहो, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता है कि जिसकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है उसको तुम शक्तिमान कहोगे तो फिर उसकी कोई खुशी नहीं होती है। उनके उनके गुणों का दान इस तरह से तरह तरह के नाम उनके लोग उससे उसमें प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ मनुष्य जब उनके साथ अपने पद का संबंध बनाता है तो यह आत्मीयता प्रभु को बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और उनको अपना माना उसको तो वे इतना अधिक प्यार करते हैं कि अपना सारा वैभव भी उस पर लुटा दे, उतने से भी संतोष नहीं होता है तो फिर अपने को ही उस पर निशावर करते हैं। ऐसा अनेकों उदाहरण हम लोगों ने सुना है मनुष्य के साथ अपने पन के संबंध का, कितना आदर दिया उन्होंने, कितनी तरह से अपना मानने वाले अपने आशीष होने वाले भक्त को निभाया। एक लीला मैंने देखी थी, एक बात बहुत पुरानी बात है, आपने तो नहीं सुना होगा, नाम से तो भूल गई हूँ, लेकिन वो जात का कुम्हार था जो बहुत प्रेमी था भगवान का। भगवान के प्रेम की बाढ़ जब भक्त के हृदय में आती है तो किसी भी प्रकार की वासना शेष नहीं रहती। एक बहुत बड़ी बात होती है। मनोविज्ञान में तो मैंने ये पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन में निरस्ता सताती है तो उसके भीतर काम वासना का उद्रेक होता है। तो जिनको जितनी जितनी निरस्ता होती है उनमें उतनी उतनी वासना उग्र होती है। उसके विपरीत जिनका संबंध प्रभु से हो जाता है और जिनके भीतर उनकी प्रीति का रस आने लगता है उनके भीतर सब वासनाएं अपने आप ही गायब हो जाती हैं। फिर वासना उनमें जगती ही नहीं है, काम लगता ही नहीं है। तो उस कुम्हार के जीवन में मैंने ऐसा देखा कि जब प्रभु का प्रेम बढ़ने लग गया तो प्रेम से उसका हृदय पवित्र होने लगा। पवित्रता में अपने पराये का भेद लिखने लगा। तो ऐसा होते होते एक दिन प्रभु के प्रेम में मगन कीर्तन वर्तन कर रहा था। इतने में स्त्री आई उसकी किसी जरूरी काम से, तो हृदय उसका इतना शुद्ध हो गया है, वासनाएं खत्म हो गई है। तो कहता है कि देखो तो अब तुम उसको छूना मत, अब हम लोग स्त्री पुरुष नहीं है, अब तो हम भगवान के हैं, अब तो हम भगवान के हैं। स्त्री पुरुष का संबंध भी उसके भीतर से निकल गया, बहुत पवित्रता आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद अब अधिक अधिक ये रमने लगा भगवान की भक्ति में। तो एक दिन किसी जरूरी काम से बहुत बिगड़ती हुई स्त्री आई और वो अपनी मस्ती में भगवान के गुण गा रहा था। बस आके उसने दोनों हाथ पकड़ के मिला दिए। घर का काम कैसे होगा, नहीं करते रहोगे तो चले जाएंगे। छू दिया उसने, छू दिया ये आदमी चौंक गया। जब उसको संभाल में आया उसने देखा कि स्त्री है तो करने लगा के दिया, अब तो मुश्किल हो गई। मैंने जो उनसे कहा था कि अब हम सब भगवान के पास रखते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रहा, तुमने छू दिया है। और जहां उसने पकड़ा था उतना उतना उसने कटवा दिया। फिर अपने भजन में मगन है तो हाथ तो कट गए, अब मिट्टी का बर्तन बने गए थे, गांव के लोगों के बर्तन मिले गए थे, बहुत तकलीफ होने लगी। कुम्हार जात का मिट्टी का बर्तन बनाने वाला बेचने वाला गांव में तकलीफ होने लगी लोगों को। और ये भजन में मस्त है भगवान के प्रेम में, अब इससे कोई काम भी नहीं होता है और हाथ बहुत कट ही गए, अब क्या होगा। तो जब परिवार में तकलीफ होने लगी, बाल बच्चे भूखे बनने लगे, अब क्या हो, काम करने वाला तो बेहाता हूं तो बैठ गया, आप कौन कमाए कौन खिलाएगा। तो इनको कुछ पता नहीं चला था कि उन्होंने ध्यान भी नहीं लिया, ये अपना वैसे ही मगन रहे। तो भगवान से देखा कैसे जाए, आए और कुम्हार बनकर आए, फटे पुराने मैले कपड़े की पगड़ी सिर पर बांधकर, साथ में एक गधा बोझ ढोने वाला लेकर के आए और आकर कहते हैं, मेरे भाई मेरे देश में अकाल पड़ा है, मैं मिट्टी का बर्तन बनाना जानता हूँ, उनको कोई नौकर रखेगा क्या, यहाँ किसी को काम है क्या। सुना गांव के लोगों ने, दिखा दिया लोगों ने कुम्हार का रास्ता, अरे आओ भाई आओ आओ, हमारा कुम्हार तो हाथ कटा के बैठा है, यहाँ तो मिट्टी के बर्तन के बिना बहुत अकाल है, चलो 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 काम करो। यहाँ ले आए उनको कुम्हार के पास, उनके पास आकर के उन्होंने बता दिया अपना हाल। भाई हमारे देश में अकाल पड़ा है, मैं कमाई करने के लिए बाहर निकला हूँ, मैं कुम्हार से जाता हूँ, मिट्टी का बर्तन बनाने आता है मुझसे, मिट्टी धोने के लिए साथ में गड्ढा लाया हूँ, तुम मुझको नौकर रख लो, मुझसे काम करवा लो, कुम्हार खुद आनंदित हो गया। लगने लगा बड़ा अच्छा है, आओ भाई आओ। तो अब भगवान का प्रेमी जो है उसको रोटी सूझती है पीछे और भजन सूझता है पहले। वो कहने लगा कि अच्छा भैया ठीक बात है, तुम बांध दो कभी को हमारे दरवाजे पर, उसको भाजुक दे दो और आओ जरा पहले भगवान का भजन कर ले, फिर काम शुरू कर दे। तो बुलाया, आ गए और यूं ही उसने अपने कटे हुए हाथ से उनका आगमन किया और कहा कि आओ थोड़ा भजन कर ले, भगवान को याद कर ले, फिर मिट्टी का काम करेंगे। तो उसका तो एकदम से रोमांच हो गया, बहुत आनंद खा गया, चौंक करके खड़ा हो गया। मुझे लगा भैया तुम कौन हो, तुम्हारे स्पर्श से हमको इतना आनंद आता है, तुम कौन हो भैया सच बताओ। तो मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, मैंने देखा था मैंने, तो जल्दी से ही वो मुख नीचे कर रहे हैं कि पहचान न ले कहीं, कुछ इसको दिख न जाए, तो मुंह छिपा छिपा करके करते जा रहे हैं। भैया मैं तुम्हारी ही जात का हूं। इस बात पर स्वामी जी महाराज ने मेरा ध्यान दिया, मैं तुम्हारी ही जात का हूं, मैं सब करता हूं, मैं तुम्हारी ही जात का हूं, और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं भैया, का बर्तन बनाना जानता हूँ, तुम्हारी ही जानता हूँ। ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, बर्तन बनाने में मुझे क्या देर लगती है, जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, उनको मिट्टी का बर्तन बनाने में क्या देर लगे। जरा से संदर्भ में बस देर से देर वहां बर्तन लग गया, पक गया, तैयार हो गया, कोई ठिकाना ही नहीं है, जितना गांव के लोग चाहो उतना ले जाओ, एक एक जन आकर के घर तक बीच बीच ले जाओ तो घटता ही नहीं है। जरा सी देर में उसने बर्तन बन गया, जरा सी देर में सबकी जरूरत पूरी हो गई और बाकी समय तो कुम्हार के साथ वो अपना मस्ती में कट रहा है। तो करते करते पांव से तो वो मिट्टी गूंजता ही था, हाथ उठते नहीं थे, तो वो मिट्टी गूंज देता था, ये कर देते थे, काम हो जाता था। और उसके बाद उनके भजन में, उनके आनंद में, मस्ती में करते करते जब जब कुम्हार थक जाता तो खूब प्यार करते उसको, सिर सहलाते, पीठ सहलाते, करते कि बुरा भी हो रहा है तो ठकुर भी हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा आराम कर ले, फिर उठेंगे तो किसी मिट्टी का बर्तन बनाएंगे। तो जब वो लेट जाता तो इतने प्यार से उसके चरण दबाते 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 उसको आराम कराते बुलाते, देख देख करके तो देखने वाले भी क्या हो रहा है, तो मैं क्या बताऊं, वही नहीं कहने सुनने के लायक है। तो जिसने ऐसा प्यार किया और जिसने ऐसा प्यार पाया उसका क्या हो रहा होगा, तो हम अनुमान ही कर सकते हैं, हम बहुत उम्मीद बात रहा। तो ये बात इस सत्य को प्रकाशित करने के लिए है कि जो सब प्रकार से उनका होकर रहना पसंद करता है, सचमुच प्रभु सब प्रकार से उस भक्त के ही हो जाते हैं। उसकी चाकरी भी करेंगे, उसकी सेवा भी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे भी, उसको आराम भी दिलाएंगे, उसके चरण भी दबाएंगे, उसको सब प्रकार से प्रसन्न करने की बात बनती है उधर से। और हमारी भावना जो है कि मैं सब प्रकार से प्रभु से होकर रहूं, तो मेरी भावना थोड़ी दुर्बल होगी और बहुत सीमित होगी, लेकिन केवल मेरी अभिलाषा कि मैं सब प्रकार से उनके हो जाऊं, परमात्मा को इतनी प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है कि वो साधक के भीतर की दुर्बल अभिलाषा को अपनी प्रियता दे करके खूब कोशिश करके उसको पक्का कर देते हैं। یہ اپنے لیے بہت بڑھیا بات ہے. اگر مجھ کو ہی اپنی صفائی کرنی پڑتی تو کیا جانے ہم کر پاتے کہ نہیں کر پاتے کہ کیا ہوتا. لیکن ہماری دربل ابھیلاشا کو وہ اپنی شیتا کا رس دے کر کے پورا کر دیتے ہیں. اور بھکت جب سب پرکار سے بھرپور ہو کے کرتا ہے کہ یہ پربھو تمہیں جو اچھا لگے سو کرو, تمہاری پرسنتا جس میں ہو, تو وہ بھی ادھک آنندت ہو کر کہتے ہیں کہ اب تم جو کہو سو میں کروں. بڑا آنند آتا ہے, بڑا آنند آتا ہے ایک دوسرے کو. اور سمی جی مہاراج کو اپنے انوبھو کی ہی بات کرتے ہوں گے لیکن اپنے سے کبھی پرکٹ کرتے نہیں, کچھ چھپاتے رکھتے. تو اتنا ہی کرتے کہ کچھ نہیں پتا چلتا ہے کہ کون پریمی ہے اور کون پریماسپد ہے. پریمی کہتا ہے تم میرے پریماسپد, تو پربھو بھکت کو کہتے ہیں تم میرا پریماسپد. تو بھکت کبھی پریمی تو پربھو پریماسپد بنتے ہیں, پربھو کبھی پریمی تو بھکت پریماسپد بنتا ہے. اور بھکت کی جو اپنی بھاونا ہے وہ تو پریم سوروپ ہو کر ہی جا کے ان میں مل جاتا ہے. پھر تو دونوں کی ایک دوسرے کی پہچان ہی نہیں رہتی. وہ کہے گا ہم تیرے, تو وہ کہیں گے ہم تیرے. ایسا خوب ہوا ہے جنکپور میں ودائی سے پہلے جب بہت باتیں ہو رہی ہیں, بچیاں بیٹھتی ہیں, سنت لوگ بیٹھتی ہیں اور سب اچھی ہو رہی ہیں. محل میں ساتھ ودائی میں بھی گئے تھے تب بھجن بھجن کرایا جا رہا تھا, بہت ادھیر ہو رہے ہیں سب لوگ. وہ لالن آپ چلے جائیں گے تو ہم دیکھے بنا کیسے رہیں گے, تو کیسے کریں گے, تو کیسے کریں گے. تو اس سمے شری کشوری جی کی 12 بہنیں تھی اپنی اور سکتے اور سکھیاں بھی بہت سکھی. تو ان سب پریمی جنوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ مریادا پرش ہے, ایک چھوڑ کر دوسرا وواہ نہیں ہو سکتا. وواہ کرنے کی بات ہی نہیں تھی, پھر بھی یہ اتیانت عجیب ہو کر کہتی ہے یہ لالن آپ چلے جائیں گے. پہلے تو مجھے منا رہی تھی کہ جاؤ مت, یہیں رہو. بہت کہا گیا, بہت کہا گیا ہم ایسا کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, تم یہیں بسو, یہیں رہو, مت جاؤ. پھر انت میں جانا طے ہو گیا. سب یہ کہتی ہیں کہ اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں, اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو کشوری جی کو چھوڑ کر رہ نہیں سکیں گے, اس لیے ہم جائیں گی اور آپ کے محل کے پیچھے سوچ کی کٹیاں بنائیں گے اور لال جی لال کے درشن سے ہم جیون بتائیں گے. کوئی سکھ نہیں چاہیے, کچھ سامان نہیں چاہیے. اسی پرکار سے ہم لوگوں کو آپ کیول اپنے درشن سے آنے کا اوسر دے دیں گے. جائیں گے انہوں نے کھا لیا اور آئی تھی. تو جنہوں نے ان کی پریتا کے لیے سب پرکار سے اپنے کو ان کی پرسنتا پر چھوڑ دیا اور کیول کیول ان کے پریہ درشن سے ہی سنتشٹ رہ کر سب اسویدھا سب دکھ سہن کرنے کو اپنے کو تیار کر لیا. تو بہت ہی پریم بھرے ہردے سے کہتے ہیں یہ سکھیوں, تو میں سب پرکار سے آپ کا ہی ہوں, میں آپ کا ہی شکر کروں گا. آپ نے جو کیا تو کسی بھی نہیں پیار ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا. پریمی جنوں نے پریم کا ناتا نبھانے کے لیے سنسار کے ویبھو کو ٹھکرایا. راج محل کی راجکماریاں تھیں, جنک مہاراج کے بھائی کی لڑکیاں تھیں اور نگر کی لڑکیاں تھیں. तो प्रेम का नाता निभाने के लिए उन्होंने संसार के वैभव को ठुकराया। तो संसार के मालिक ने सृष्टिकर्ता होने के अनंत ऐश्वर्यवान ने अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर उन प्रेमी जनों पर अपने को नफरत की। वो कहती हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, सब प्रकार से हम तुम्हारे हैं, अपनी शरण में रख लो। वे कहते हैं कि हो सकिए, आपने जो किया तो किसी ने नहीं किया, सब प्रकार से मैं आपका ही हूँ, आपका ही होकर रहूंगा। और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ प्रियजनों के लिए सचमुच वे कभी मुखियापुरी से गए नहीं, उस भाव को जो भक्त है वहां के वो यही मानते हैं कि ये नित्य किशोर किशोरी सदैव इसी पुरी में है। और बहुतों को प्रातः काल जैसे जैसे उनका भाव है, जिसकी जिसकी जैसी सेवा है, नित्य किशोर किशोरी के दर्शन वहां मुखियापुरी में होते ही रहते हैं। जिस मनुष्य ने मरणशील शरीर को लेकर मलमूत्र की थैली से भरा हुआ शरीर, इस मरणशील शरीर को लेकर उस अजन्मा अविनाशी को प्यार करना पसंद किया, उसका देह धर्म छूट गया, वह मृत्यु पर विजयी हो गया, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती, और इस धरातल पर दो पांव से विचरण करता हुआ भी वह प्रभु के प्रेम का प्रतीक होकर स्वयं आनंदित रहता है और उस आनंद स्वरूप को आनंदित करता है। जिस साधक के भीतर की यह छोटी सी अभिलाषा है अपनी ओर से कि मैं सब प्रकार से उनका होकर रहूं, वह साधक धन्य है, वह घड़ी धन्य है जब उसके हृदय में यह अभिलाषा पैदा की और वे प्रभु जी हैं जो दीन से दीन दीन से दीन इस अभिलाषा की पूर्ति में अपने आप से
और क्रियात्मक साधना। उपासना का अर्थ है ईश्वर से आत्मीय संबंध की स्वीकृति। स्तुति का अर्थ है ईश्वर की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना। प्रार्थना का अर्थ है उनकी कृपा की आवश्यकता अनुभव करना। साधन का अर्थ है बुराई रहित होना। भजन का अर्थ है प्रभु की स्मृति का जागृत होना। पूजन का अर्थ है सर्वहितकारी कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना। यह सब स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं है। अन्य आशा, अन्य विश्वास, अन्य भरोसा और अन्य संबंध जीवन में से निकालकर एक ईश्वर विश्वास एवं संबंध पर संपूर्ण जीवन को आधारित करना। ईश्वर के नाते से सर्वहितकारी कार्य द्वारा सेवा के रूप में प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा भाव से करना। अपने सहित अपना सब कुछ प्रभु के समर्पित कर उनके शरणापन्न होना। प्रवृत्ति में सेवा और निवृत्ति में समर्पण योग, यह मानव सेवा संघ के अनुसार भक्ति पंथ की साधना है। यह मानव जीवन में प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति का मूल मंत्र है। इसको अपनाए बिना किसी देश, युग, मजहब, संप्रदाय का साधक क्यों न हो, भक्ति पंथ में सफलता पा नहीं सकता। अतः मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने सभी के लिए भक्ति पंथ में सफलता पाने के अकाट्य एवं अनिवार्य तत्वों को हमारे सामने रख दिया। किसी भी साधक को इन अनिवार्य तत्वों को अपनाकर भगवत प्रेम से परिपूर्ण होने में न असमर्थता है न पराधीनता है। संघ के द्वारा उन्हीं मूलभूत साधनों का प्रतिपादन किया गया जो प्रत्येक युग वर्ग देश मत संप्रदाय एवं मजहब के साधकों के लिए अनिवार्य है तथा प्रत्येक साधक प्रत्येक परिस्थिति में स्वाधीनता पूर्वक उन्हें अपनाकर सिद्ध हो सकता है। जैसे जीवन के सत्य को स्वीकार करना, जाने हुए असत्य के संग का त्याग करना, निर्विवेक का अनादर न करना, प्राप्त बल का दुरुपयोग न करना, प्रभु विश्वास में विकल्प न करना, आत्मनिरीक्षण करना, व्यक्तिगत सत्संग करना, सही प्रवृत्ति एवं सहज निवृत्ति को अपनाना, मूक सत्संग एवं समर्पण योग में रहना, सुख दुख को साधन सामग्री मानना, इन्हें जीवन नहीं मानना, सुख में सेवा तथा दुख में त्याग को अपनाना, सुख दुख से अतीत के जीवन में शांति पाना, कर्तव्य निष्ठ होना, अचाह अकिंचन एवं अप्रयत्न होकर भौतिकवादी विश्व प्रेम से, अध्यात्मवादी नित्य जीवन से तथा ईश्वरवादी प्रभु प्रेम से अभिन्न होगा। अतः सेवा त्याग और प्रेम को मानव जीवन का सुंदरतम चित्र बताया गया। अचाह अकिंचन एवं अप्रयत्न हुए बिना किसी भी साधक के लिए सिद्धि संभव नहीं। अचाह अकिंचन एवं अप्रयत्न होना स्वधर्म है, इसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। संसार की निंदा करते हैं परंतु छोड़ते नहीं हैं। भगवान की बहुत स्तुति करते हैं परंतु उनको पसंद नहीं करते। जो अनुभव सिद्ध है उसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए, जो श्रद्धा से साध्य है उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। यह अनुभव सिद्ध बात है कि पराश्रय में जीवन नहीं है, और यह श्रद्धा की बात है कि जीवन अपने में है। अनुभव से लाभ उठाओ, क्या करो, पराश्रय से सुख मत लो, नहीं तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी। आया हुआ सुख चला जाएगा परंतु आया हुआ दुख नहीं जाएगा। सुख की वासना से जन्म होगा और दुख भोगना पड़ेगा। सत्ता रूप में सत्ता है परमात्मा की, उसमें कल्पित हूँ मैं और जगत। जो कल्पित है उसे चाहिए कि परमात्मा की सत्ता में आस्था कर ले। कल्पित को कल्पित में आस्था करनी नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना मानने से जगत मिल नहीं जाता, और परमात्मा को नहीं मानने से परमात्मा अलग नहीं हो जाता। अतः परमात्मा में आत्मीय संबंध मानने से परमात्मा मिल जाते हैं, और जगत को अपना न मानने से जगत छूट जाता है।